रात के वक्त जब अरुणिमा कमरे में वापस आई तो वो एकदम हैरान हो गई। आस्तिक खटिया पर बहुत ही आराम से सो रहा था। वो आस्तिक को ऐसा सोता हुआ देखकर बहुत हैरान हुई। ये पहली बार था जब उसने आस्तिक को इतने सुकून से सोता हुआ देखा था। ऐसा नहीं था कि आस्तिक को उसने कभी सोता हुआ नहीं देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक सुकून था। शायद वो इसीलिए था क्योंकि उसे कल की कोई फिक्र नहीं थी, जबकि असल जिंदगी में आस्तिक हजारों टेंशन को अपने साथ लेकर सोता है। उसे कल की भी उतनी ही फिक्र होती है जितनी कि उसे पल की होती है। उसे पता है उसका आने वाला पल बहुत खतरनाक और अजनबी खतरों से भरा हुआ है। ऐसे में इंसान को सुकून कहाँ मिलता है। लेकिन आज इस गांव की आबो हवा में आस्तिक को बहुत ही ज्यादा अच्छा और रिलैक्स महसूस हो रहा था। ये अलग बात है कि मच्छरों ने अभी भी शहरी खून का स्वाद लेना बंद नहीं किया था। यहाँ तक कि आस्तिक के हाथ पर अभी भी दो मच्छर बैठे हुए थे। अरुणिमा धीरे से आस्तिक के पास आई और अपनी दुपट्टे को गले से उतार कर उसके ऊपर हल्के हल्के से हवा करने लगी। ये गांव है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बिजली नहीं है, लेकिन बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई आ रही थीं। अरुणिमा ने तुरंत खिड़की खोल दी जिससे कि आस्तिक को बाहर की ठंडी हवा लग सके। इसी के साथ ही आस्तिक ने धीरे से एक हाथ अपने गाल पर थप्पड़ की तरह मार दिया क्योंकि वहां पर मच्छर काट रहा था। उसे ऐसा करते देख अरुणिमा की हंसी छूट गई। अपने नरम गद्देदार बिस्तर पर सोने वाला आस्तिक आज इस जूट की बनी चारपाई पर जैसे सुकून से सो रहा है, ये इसी बात को साबित करता है कि इंसान को सोने के लिए सुकून चाहिए, बिस्तर नहीं। अरुणिमा दूसरी तरफ चारपाई पर लेट गई। उसने एक नज़र आस्तिक को देखा और फिर आंखें बंद कर ली। शायद वो भी आज पूरे दिन की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए आज लग रहा था कि उसे भी गहरी नींद आ गई। लेकिन तभी वहां पर दादी आईं। वे अपने साथ मच्छर मारने वाली अगरबत्ती लेकर आई थीं। उन्होंने धीरे से कमरे के बीचों बीच उसे रख दिया और एक बार कमरे से जाने से पहले उन्होंने आस्तिक और अरुणिमा को देखते हुए अपने मन में कहा, ये दोनों एक दूसरे से जितना दूर दूर नजर आते हैं, असल में इनकी किस्मत एक दूसरे के साथ ही बांधी हुई है। हे महादेव, मुझे नहीं पता कि आपने इन दोनों की किस्मत किस कलम से लिखी है, लेकिन जहां से मैं अरुणिमा को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी में अभी इम्तिहान बाकी है। दादी कमरे से चली गई और बाहर आंगन में लगे बिस्तर पर सो गई जहां पर मच्छरदानी टंगी हुई थी। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और रोजमर्रा के कामों से लोगों की सुबह हो रही थी। अरुणिमा की सुबह तो दादी के भजन से ही शुरू हो गई थी। जब दादी आंगन में पानी डालकर धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी और भजन गा रही थी तो अरुणिमा की आंखें खुल गई। वो दादी के पास आकर उनसे कहती है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन दादी ने ये कहकर मना कर दिया कि अरुणिमा को अभी वजन नहीं उठाना चाहिए और कोई भी ऐसा भारी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अरुणिमा कुछ करना चाहती थी क्योंकि शंभू अभी खेतों पर गया हुआ था और उसे आने में अभी वक्त था। ऊपर से आस्तिक का तो अरुणिमा को पता ही है, 10 बजे से पहले तो उसकी सुबह नहीं होती। दादी ने अरुणिमा को बिठाकर उसके हाथों में फूलों की टोकरी दे दी और भगवान जी के लिए माला बनाने के लिए कहा। अरुणिमा मुस्कुराते हुए दादी को देखती है और माला बनाने लगती है। दादी आंगन साफ करती हैं और उसके बाद तुलसी जी की पूजा करती हैं। अरुणिमा देखती है कि यहाँ हर घर के बाहर अलग से तुलसी जी लगाई गई है और हर औरत अपने घर के बाहर की तुलसी जी की सेवा कर रही है। अरुणिमा को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके घर के गार्डन में एक से एक विदेशी फूलों की प्रजातियां हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे रेयर पौधे भी हैं जो दुनिया में मिलना मुश्किल है, लेकिन इन सब के बावजूद अपने देश की संस्कृति उसे एक अलग सा एहसास करवा रही थी। जहाँ घर के आंगन में तुलसी जी की पूजा करना ना सिर्फ हमारी सभ्यता और संस्कृति को दोहराता है बल्कि हमें एक आत्मिक सुख भी देता है। अरुणिमा ने सोच लिया था कि घर वापस लौटकर वह रायचंद मेंशन में भी एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएगी। तभी अरुणिमा को घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। अरुणिमा एकदम से घबरा जाती है और जल्दी से घर के अंदर देखती है तो वो एकदम से चौंक कर हैरान हो जाती है। आस्तिक जमीन पर गिरा हुआ था और अपने शोल्डर को सहलाते हुए उसका चेहरा दर्द के एक्सप्रेशन जैसा हो गया था। अरुणिमा जल्दी से आस्तिक के पास जाती है और कहती है, आस्तिक क्या हुआ तुम्हें? व्हाट द हेल, मेरा बेड कहाँ है? आस्तिक ने झुंझुलाहट से कहा। अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, बेड? कौन सा बेड आस्तिक, तुम चारपाई पर सो रहे थे। आस्तिक ने आंखें खोलकर देखा तो वो अभी भी शंभू के घर में ही था। उसने अपना कर पीते हुए कहा, अरुणिमा हमें और कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा यार, इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक काम करते हैं ना, अब तो सुबह हो गई है, किसी से पूछकर हम ही हाईवे की तरफ चल देते हैं। अरुणिमा मुस्कुराते हुए पहले तो आस्तिक का कंधा थपथपाती है और उसे खड़ा करती है, फिर उसके कपड़ों पर लगी मिट्टी साफ करने लगती है क्योंकि इस घर का आंगन कच्चा था और उसमें गोबर की लिपाई हुई थी।
अरुणिमा ने आस्तिक के कपड़े साफ करते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम जा सकते हैं, लेकिन जिनके घर हम एक रात मेहमान बनकर रुके हैं, तुम्हें नहीं लगता कि उनके लिए ये इंसल्ट वाली बात होगी कि उनके मेहमान उनके घर से नाराज होकर चले गए? देखो आस्तिक, मुझे पता है कि यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, पर हम कौन सा यहाँ पर बसने वाले हैं, अभी कुछ ही घंटे में हम यहाँ से चले जाएंगे, और मुझे पता है तुम सुबह सुबह क्या मिस कर रहे हो। आस्तिक, जो मुंह बनाकर दूसरी तरफ देख रहा था, एकदम से अरुणिमा की तरफ मुड़ा। क्या मिस कर रहा हूँ मैं? अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, ब्लैक कॉफी। आस्तिक इरिटेटेड होकर बोला, कम ऑन अरुणिमा, तुम्हें मजाक करने के लिए यही टाइम मिला है? ब्लैक कॉफी? और यहाँ इन लोगों को पता भी होगा कि ब्लैक कॉफी होती क्या है? तभी दादी वहां आ गई। उन्होंने आस्तिक को देखते हुए कहा, अरे शहरी बाबू, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे शहर में शानदार मिलती है और हमारे गांव में नहीं मिलती? हमें भी तो बताओ, हम भी तो देखें कि शहर के लोग कौन सा चाट पकौड़ा खाते हैं। अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल इनको आदत है सुबह सुबह ब्लैक कॉफी पीने की, उसके बिना इनका दिन शुरू नहीं होता। दादी ने पहले अपनी छड़ी से सहारा लिया और फिर अपना सिर कुचलाते हुए कहा, ब्लैक कॉफी? देखो, ये जो कुछ भी होता है तुम हमें बता दो, हम बना देंगे। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादी, वो ऐसे नहीं बनाई जाती, उसके लिए कुछ सामान चाहिए होता है जो अलग होता है। दादी ने थोड़ा गुस्से में अरुणिमा को देखा और बोली, अच्छा तो तुम शहर के लोगों को लगता है कि हमारे पास तुम्हारी जरूरत का सामान नहीं है? पहले तुम बताओ ये बनता कैसे है, फिर देखते हैं कि हमारे पास सामान है या नहीं। आस्तिक और अरुणिमा दोनों हैरानी से दादी को देखने लगे। अरुणिमा ने कहा, दादी, ये एक ब्लैक पाउडर से बनता है, यानी कि कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर को गर्म पानी में डालते हैं और फिर बिना चीनी के उसे चलाया जाता है। दादी अरुणिमा की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई और बोली, समझ गई कि तुम्हारे शहरी आदमी को क्या चाहिए। बस 2 मिनट, तो मैं अभी बनाकर लाती हूँ तुम्हारी ये ब्लैक कॉफी। फिर दादी वहां से जाते जाते अचानक रुक गई और आस्तिक को देखकर बोली, बिटिया तो बहुत सुंदर है, बिना नहाए धोए भी पता नहीं चलता कि नहाई हुई है कि नहीं, लेकिन तुम्हें तो कोई देखकर ही बता सकता है कि धूल मिट्टी से कुश्ती लड़कर आए हो। जाओ जाकर नहा लो, थोड़े साफ सुथरे हो जाओ, तब तक शंभू भी आ जाएगा, उसके बाद कुछ खा पीकर तुम लोग अपनी मंजिल के लिए निकल जाना। दादी तो वहां से चली गई, लेकिन आस्तिक हैरानी से अरुणिमा को देखकर बोला, ये दादी क्या बोलकर गई, मैं धूल मिट्टी से भरा हुआ हूँ क्या?
अरुणिमा हंसते हुए बोली, नहीं, धूल मिट्टी से भरे हुए तो नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है, कुछ तुम्हारे सर पर तो कुछ तुम्हारे कपड़ों पर। एक काम करो ना, यहाँ पास में ही बाथरूम है, तुम वहाँ जाकर नहा लो, और दादी ने मुझसे कहा है कि यहाँ पर पानी सिर्फ सुबह के टाइम ही आता है, तो जल्दी जाकर नहा लो, अगर पानी चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी।